मीठे मीठे सिखिले बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कितना पाप है और कितना पुण्य जमा किया है, पाप और पुण्य। पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है? जिससे अपनी आत्मा को दुख हो और दूसरे की आत्मा को दुख हो वो है पाप, और जिससे अपनी आत्मा भी सुखी हो और दूसरे की आत्मा भी सदाकाल के लिए सुखी हो वो है पुण्य। कोई कहे भिखारी सुख की बात, तो वो अल्पकाल का सुख है या सदाकाल का सुख है? अल्पकाल का सुख है लेकिन सदाकाल का दुख है, तो उसे पाप ही कहा जाएगा, पुण्य नहीं कहा जाएगा। दिल दर्पण में विचार किया जाता है ना, क्योंकि ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया। तुमको रोशनी मिली है तब समझना होता है, सभी कहते हैं हम पापात्मा है। दुनिया में कोई ये कहता है कि हम देवात्मा है, हम महात्मा है, पुण्यात्मा है? अपने मुंह से तो कोई कह भी नहीं सकता। पुण्यात्मा तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता, क्यों? जैसे पाप की दुनिया में सब पापात्माए हैं, कोई भी पुण्यात्मा नहीं, और सत्युग त्रेता जो पुण्यात्माओं की दुनिया होती है उसमें कोई पापात्मा नहीं होता। पुण्यात्माओं की दुनिया सत्युग को कहा जाता है, यहाँ पुण्यात्मा कोई होता ही नहीं है। पुण्यात्मा यहाँ कहाँ से आई? पाप ही करते रहते हैं क्योंकि रावण राज्य है। खुद कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, हम जानते हैं भारत पुण्यात्माओं का खंड था, कोई भी पाप नहीं करते थे। शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, और अब शेर और बकरी को एक घाट खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? शेर बकरी को चीर फाड़ के खा जाएगा। पहले खीर खंड थे, बाबा भी कहते हैं ना बच्चे खीर खंड बनो। खीर खंड में क्या होता है? चावल, दूध और चीनी तीनों मिक्स होकर के एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं खीर खंड। तमो प्रधान पुण्य आत्मा, एक तो तमो प्रधान और एक उसके एवज में उल्टा है पुण्य आत्माओं की दुनिया और एक तमो प्रधान की दुनिया, तो तमो प्रधान में पुण्यात्मा कहाँ से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है, तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवताएं थे, उनों की महिमा है। देवताओं की क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम खुद उनकी महिमा करते हैं, कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, किनकी महिमा करते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं की महिमा करते हैं और अपने लिए कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर के जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो ये किसने कहा है? आत्मा ने कहा। ये भी कहेगा कौन? जो आत्म की स्थिति में स्थित तो होने वाले होंगे वो कहेंगे, देह अभिमानी सांडे इस बात को न समझेंगे और न कहेंगे। किसके सामने? किसके सामने? लक्ष्मी नारायण के सामने। लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है ना, तो लक्ष्मी नारायण के सामने जो आत्म की स्थिति वाले होंगे वो सच्चाई को समझेंगे। क्यों? आत्मा समझती है हम कहाँ तक हैं। हम इस समय पापात्मा है, पुण्यात्मा तो देवी देवताएं होते हैं, वो जरूर पूजे जाते हैं। पुण्यात्मा की पहचान क्या? पुण्यात्मा पूजी जाती है, और पापात्मा उनकी कोई पूजा नहीं। रावण की कोई पूजा करता है? रावण की कोई पूजा नहीं करता, और राम लक्ष्मण की, राम और कृष्ण की सब कोई पूजा करते हैं। अभी आकर के देवताओं के चरणों में झुकते हैं, साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं, अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे पर जाते हैं, तो ये है पापात्माओं की दुनिया। भारत पुण्यात्माओं की दुनिया थी जब लक्ष्मीनारायण का राज्य था। उनको कहा जाता है स्वर्ग, किनको? जहाँ लक्ष्मीनारायण का राज्य होता है वहाँ उस दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, और आज किसका राज्य? आज है राक्षसों का राज्य। तो राक्षसों के राज्य में सब पापात्मा है, कोई पुण्यात्मा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा होती है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु यहाँ स्वर्ग है कहाँ जो गया? ये दुनिया कौन सी है? स्वर्ग की दुनिया है कोई इस दुनिया में? नहीं, ये तो सारी दुनिया नरक की है। तो स्वर्ग कहाँ से गया? तो ये तो बात झूठी हो गई कि जो मरा है सो स्वर्ग गया। क्यों कहते हैं फिर? ये कहाँ की यादगार है? ये समय संगम युग की यादगार है। इस समय जो जीते जी मरते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, अपने जीवन को श्रीमत रूपी लाठी के आधार पर छोड़ देते हैं, वो ये अनुभव करते हैं। क्या क्या अनुभव करते हैं? कि हम स्वर्ग में हैं, बाप के रहबरी में रहना, बाप की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना, मन स्वर्ग में अनुभव करना। अगर बाप की पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मन मत पर चलते हैं या मनुष्य गुरुओं की मत पर चलते हैं, तो जरूर दुखी होंगे। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का बच्चा स्वर्ग में होना चाहिए, सुख में होना चाहिए या दुख में होना चाहिए? करोड़पति का बच्चा, अरबपति का बच्चा हो, पैसे पैसे के लिए मोहताज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अगर है तो इससे क्या साबित होता है? कि या तो बाप की मत पर नहीं चलता है, अथवा बाप से बिछुड़ा हुआ है, दूर है। तो जो पधारा सो स्वर्ग गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मरता है, जो जीते जी मरता है, वो सुख की दुनिया का अनुभव इसी दुनिया में कर सकता है। स्वर्ग जब था तब तो सतयुग था। क्या उसका नाम ही है? क्या स्वर्ग? स्वर्ग स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहाँ गया? आत्म की स्थिति में गया। अगर आत्म की स्थिति में गया तो स्वर्ग का अनुभव करेगा। देवान की स्थिति में है तो क्या अनुभव करेगा? देवान है तो इंद्रिया जोर मारेगी, नरक का अनुभव करेगा। गोमूत्र की दुनिया में रमण करेगा, बुद्धि भी रमण करेगी और शरीर से भी नीचे गिरेगा। तो बोला, स्वर्ग जब था तब तो सतयुग था। मनुष्यों को तो जो आता है जो कह देते हैं, उनकी तो समझ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी समझ में अब बात बैठ रही है कि हम आत्माभिमानी बनेंगे तो हम स्वर्ग का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, और देहभानी बनेंगे तो हम दुख का अनुभव करेंगे। स्वर्ग में गया इससे साबित है नरक में था। कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, तो कहाँ था? नरक में। माने ये दुनिया क्या है? नरक है। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योति समाया, ज्योति ज्योति में समा गई। तो क्या ज्योति ज्योति समा जाती है? आत्मा रूपी ज्योति क्या परमपिता परमात्मा रूपी ज्योति में समा जाती है हमेशा के लिए? नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा कभी विनाश को तो पाती नहीं। आत्मा अगर परमात्मा की ज्योति में हमेशा के लिए लीन हो जाए तब तो आत्मा का विनाश हो गया। कौन चाहेगा हमारी आत्मा हमेशा के लिए अस्तित्व खत्म हो जाए? कोई नहीं चाहता ना। आत्मा तो ये चाहती है कि हम शरीर में रहते सुखी रहे, शांत रहे, अशांत न हो, दुखी न बने। तो ज्योति ज्योति में समाया का मतलब क्या हुआ? ये भी संगम युग से लगती हुई बात है, संगम युग की ही यादगार है। ज्योति ज्योति समाया माना, ज्योति माने ज्ञान की ज्योति। हमारे अंदर जो ज्ञान की ज्योति है, जो भी जितनी भी जितने परसेंटेज में जो ज्ञान है, वो सारा ज्ञान उस परमात्मा के ज्ञान में समा जाए। माने हमारे अंदर जो कुछ भी संकल्प विकल्प ज्ञान के अज्ञान के चल रहे हैं, वो सारे अज्ञान और ज्ञान के संकल्प परमात्मा के ज्ञान में तिरोहित हो जाए। तो फर्क हो गया। सन्यासी क्या कहते हैं, दुनियावी मनुष्य क्या कहते हैं। ज्योति ज्योति में समाया यानी फिर यहाँ आना नहीं है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं कहाँ रहती हैं? जहाँ भी आत्माएं इकट्ठी होकर रहती हैं, उसका धाम का नाम क्या है? वाणी से परे का धाम, निर्वाण धाम। वहाँ वाणी निशेष हो जाती है, निमानी निशेष, वाण माना वाणी। जहाँ वाणी का कोई काम नहीं रहता, मन जब हम पूरी आत्म की स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाएंगे तो हमको वाचा से बोलने की दरकार नहीं पड़ेगी। इशारे ही इशारे में सारी बातें, वाइब्रेशन से ही एक दूसरे की बात को हम समझ जाए। आपके अंदर जो संकल्प आएगा, हमारे अंदर जो संकल्प आएगा, वो दूर से ही आप उस संकल्प को कैच कर लेंगे। तो उनको निर्वाण धाम कहा जाता है, वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। क्या वैकुंठ में थोड़ा बोलते तो है, कुछ न कुछ भाषा तो होती है, बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने के लिए, कहाँ ले जाने के लिए, वैकुंठपुरी जिसे हम कृष्णपुरी कहते हैं वहाँ का रास्ता बताने के लिए आए, राजयोग सिखलाने के लिए आए। कौन सा योग? जिसमें राग भरा हुआ है, ऐसी लगन ऐसा योग सिखाने के लिए आए हैं जिसमें ऐसा राग भरा हुआ है जिस राग को दुनिया नहीं जानती है। तो देखो पावन दुनिया का मार्ग बताने के लिए बाप आते हैं और गाइड बनकर के ले जाते हैं, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का, पुरानी दुनिया में ही उपद्रव होते हैं, नई सत्य की दुनिया में कोई उपद्रव नहीं होता है। तो बाबा कितना मीठा है, अंधों की आय करके लाठी बनते हैं, मनुष्य तो साफ घोर अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, किसका? विष्णु की रात तो होती नहीं, विष्णु कहाँ होता है, दिन में होता है या रात में होता है? विष्णु तो सत्य त्रेता में राज्य करता है, वहाँ तो पति पत्नी दोनों इकट्ठे होकर के क्षीरखंड होकर के रहते हैं, तो वहाँ तो अंधेरे की बात है ही नहीं। ब्रह्मा की रात गाई हुई है, माने ब्रह्मा और ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा होता है जहाँ अज्ञान अंधेरे की रात भी होती है, और जब ब्रह्मा संपूर्ण बन जाता है, संपूर्ण ब्रह्मा सो विष्णु, तो वो अवधेले में पहुंच जाता है। तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन ये कहाँ का गायन हुआ? यहाँ का गायन हुआ। ऐसे नहीं कि सत्य त्रेता कोई ब्रह्मा की रात होती है, वहां तो ब्रह्मा होता ही नहीं, और द्वापर कलयुग में कोई ब्रह्मा की रात होती है, वहां तो ब्रह्मा होता ही नहीं। तो ब्रह्मा की रात और दिन का सवाल नहीं है, ये कहाँ की यादगार है? ये भी संगम युग की यादगार। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, तो जहाँ ब्रह्मा होगा वहाँ ब्रह्मा की रात भी होगी, और जहाँ ब्रह्मा से विष्णु बनेगा वहाँ विष्णु और ब्रह्मा का दिन भी होगा। बाप आते ही रात को दिन बनाने के लिए, आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। अभी क्या है, अभी ब्रह्मा का दिन है या ब्रह्मा की रात है? हम कहाँ हैं? हम दिन में हैं, हैं? अगर दिन में हैं तो हम सुख में होने चाहिए। क्या ब्रह्मा का दिन कब होता है? जब ब्रह्मा सो विष्णु बन जाए, तो हम विष्णु बन चुके, विष्णु स्वरूप बने, आपस में ठकठाए तो नहीं होती है, खूब होती है। जब आपस में घर में ही झगड़ा होता है तो विष्णु का घर कहाँ हुआ, लक्ष्मीनारायण का घर कैसे कहेंगे? अभी तुमको मालूम हो गया है, वो तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, शास्त्री लोग क्या समझते हैं कि अभी कलयुग की आयु हजारों वर्ष पड़ी हुई है। कब कब कहते भी है इस दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, परंतु समझते कुछ नहीं है। आजकल तो मुश्किल ही कोई ऐसे होंगे जो घर बार छोड़ते हैं, कोई कारण होगा तो घर बार छोड़ करके भाग जावेंगे, नहीं तो घर बार कोई छोड़ना नहीं चाहता। बीच में गवर्नमेंट ने आर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए, ऐसे थोड़े बस जो घर से रूठे सो जाए सन्यासी बन जाए, ऐसे तो ढेर सारे घर बार जो है वो बर्बाद होते रहेंगे। मुफ्त में बहुत माल मिल जाता है सन्यासियों को, तो सब चाहते हैं हम सन्यासी बन जाए। उनों के भी बहुत बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, किनों के? सन्यासियों। कौन से सन्यासियों के? बाहर के सन्यासियों के, अंदर के सन्यासियों के? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे बड़े बड़े सन्यासी है, मठाधीश पीठाधीश, जिनके बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, वो गृहस्थी है या सन्यासी है? किन की बात हो रही है? हैं? मठाधीश पीठाधीश की? क्यों माता जी, किसकी बात हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया में कौन ऐसे हैं जो बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश बने बैठे? गृहस्थी नहीं है वो, गृहस्थी है पति पत्नी बन करके एक घर में रहते हैं क्या? है नहीं, कौन लक्ष्मी नारायण की बात थोड़ी हो रही है? हाँ, वो भी सन्यासी है, घर घाट छोड़ करके आए हैं। ना उनका कोई धनी धोरी बाप है, प्रैक्टिकल में कोई है धनी धोरी? कोई बाप है? कोई धनी धोरी बाप भी नहीं है, उनका कोई पति भी नहीं है। तो ना पति है ना बाप है, तो सन्यासी हुए ना। और हमारा तो, हमारा तो लौकिक में भी बाप होता है और अलौकिक पारलौकिक में भी प्रैक्टिकल में बाप है। तो उन लोगों के बहुत बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं। दो दो रुपया निकालने से भी उनका हजारों रुपया इकट्ठा हो जाता है। देखो क्या बोला क्या कहा? रुपया दो दो रुपया भी अगर इकट्ठा करेंगे सबसे तो कितना हो जाता है उनके पास? हजारों रुपया इकट्ठा हो जाता है। धर्माऊ तो बहुत निकालते हैं ना, धर्म के लिए सभी रुपया दो रुपया निकाल लेते हैं, खाते रहो। वास्तव में उन्हों की जैसे कि अब राजा ही है, जिन्हों की उन सन्यासियों की जिन्होंने घर घाट छोड़ा है, बाप को छोड़ा है, पति तो उनको होता ही नहीं, तो ऐसे सन्यासियों की अभी राजा ही है, महामंडलेश्वर है क्या? बड़े बड़े मठ और पंथ बना करके, बड़े बड़े महल मारियां अटारियां बना करके बैठे हुए हैं। उनको भी साधु समाज है। क्या समाज है? साधु। साधु किसे कहा जाता है? हैं? साधु नहीं, साधु तो होते हैं साधु। साधु उनको कहा जाता है जो इंद्रियों की साधना करते हैं। उनका भी साधु समाज है, समझते हैं। साधु समाज जैसा कोई नहीं है जो भ्रष्टाचार को बंद करे। क्या वो ये समझते हैं कि हम साधुओं का समाज ही ऐसा है जो इस दुनिया से भ्रष्टाचार को बंद कर सकता है? उनकी बुद्धि में ये नहीं कि परमात्मा आकर के भ्रष्टाचार को खत्म करता है। वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं, उनको अपना अहंकार है कि हम इस दुनिया से भ्रष्टाचार को खलास कर देंगे। तो भगवान इस दुनिया में से भ्रष्टाचार को खत्म करता है या मनुष्य गुरु इस दुनिया से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश है, परंतु नंबर वन भ्रष्टाचारी तो ये है। कौन? जो बड़े बड़े बंगले बना करके बैठ जाते हैं, मठ मंडलेश्वर बना के बैठ जाते हैं पब्लिक के पैसे से, और अपना घर घाट छोड़ देते हैं। ये तुम जानते हो इन बातों को, दुनिया वाले इन बातों को जानते नहीं है। वो तो बाप से ही बेमुख कर देते हैं। क्या कहा? कौन? वो मठाधीश पीठाधीश बन करके जो बैठे हैं घर घाट छोड़ करके, जो बाप का असली पार्ट है उस असली पार्ट से बेमुख कर देते हैं, उसे बुद्धि को फिटाए देते हैं। उतरती कला है ना उनकी। क्या? चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। जिसकी चढ़ती कला होगी वो खुद भी बाप का रास्ता पकड़ेगा और दूसरों को भी बाप का रास्ता पकड़ाएगा। खुद भी बाप की पहचान लेगा, दूसरों को भी बाप की पहचान दिलाएगा। और जो खुद भटका हुआ होगा वो खुद की भी डिसर्विस करेगा और दूसरों की भी डिसर्विस करेगा। उतरती कला किसी का भला नहीं कर सकती। चढ़ती कला में निशानी क्या होगी? जिसकी चढ़ती कला होगी वो दूसरों का भला किए बगैर रह नहीं सकता। तो जो भी मत देते हैं वो गिरने की ही मत देते हैं। गृहस्थ धर्म में कमल फूल समान तो सन्यासी नहीं रहते हैं। क्या कहा? तुम बच्चे रहते हो, क्या रहते हो? जैसे कमल फूल कीचड़ में डाल दिया जाए, फिर कीचड़ में से निकाला जाए तो उसने एक भी बूंद कीचड़ की ठहरती नहीं। उनको अगर कीचड़ की दुनिया में रख दिया जाए, गृहस्थी की दुनिया में, तो वो कीचड़ में समा जाएंगे। और तुम कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी कीचड़ का तुम्हारे ऊपर कोई भी अंश नहीं लगना। तो भगवान ने आकर के गृहस्थियों को राज्यों को सिखाया था या घर घाट छोड़ने वाले सन्यासियों को सिखाया था? गृहस्थियों को सिखाया। तो आप कौन हो? आप घरग्रस्त में रहने वाले गृहस्थी हो और वो घर घाट को छोड़ने वाले सन्यासी है। तो उनको भगवान अभी भी राजयोग नहीं सिखा रहा है, प्रैक्टिकल में सिखा रहा है क्या? नहीं सिखा रहा। और तुमको सिखा रहा है। तुम बच्चियां कहती हो हम सन्यासियों का भी सामना करेंगे। क्या तुम बच्चियां जो परमात्मा बाप से राजयोग सीख रही हो वो कहती हो, ये हामी भरती हो कि हम उन सन्यासियों का भी मुकाबला करके दिखाएंगे, सामना करेंगे? समझाना चाहिए, तुम्हारा ये हठ योग है क्या? तुम हठ करके बैठे हुए हो कि हम दुनिया का कल्याण करेंगे, हम दुनिया में से व्यभिचार को हटाएंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, लेकिन मनुष्य गुरु 2500 साल से ये स्थिति देखने को मिलती है, मनुष्य गुरुओं ने इस दुनिया में संसार में भ्रष्टाचार को बढ़ाया है या घटाया है? हिस्ट्री क्या कहती है? दुनिया में तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया है। अभी भी शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया में जो मठाधीश पीठाधीश बने बैठे हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे, वो भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते। हठ का संन्यास करते हैं, उनका है हद का संन्यास और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, उनको अहंकार किस बात का रहता है कि तुम तो गृहस्थी में हो, गिरी हस्ती हो। माताओं को क्या कहते हैं? माताओं को नीची नजर से देखते हैं, उनके हाथ का बना हुआ भोजन भी स्वीकार नहीं करते उनको। क्यों समझते हैं इनके हाथ का भोजन हम क्या खाएं, ये तो गिरी हस्ती में रहने वाले हैं। लेकिन वास्तव में परमात्मा उन्हीं गृहस्थियों को फिर आकर के ऊंचा उठाता है। उनको इस बात का घमंड रहता है कि हमने घर घर से छोड़ा है, क्या यही बात दिखाएंगे कि हमने घर घर से छोड़ा है, हमने बहुत त्याग किया है। लेकिन क्या किया है कि और ही मेहलवानियां अटारियां बना के बैठ गए, और ही बड़ी बड़ी मेहलवानियां अटारियां बना करके बैठ जाते हैं। दुनिया में गृहस्थियों को जितने सुख साधन की सामग्रियां नहीं होती, उससे ज्यादा उनके पास इकट्ठी सामग्री हो जाती है। क्या क्या होता है? फ्रिज होता है कि नहीं है? फ्रिज सोफा सेट होता है कि नहीं? सोफा सेट भी होता है। एक से एक आलीशान मकान होता है कि नहीं? ये इतना सब सभी गृहस्थियों के पास होता है क्या? नहीं होता। तो हद का संन्यास वो करते हैं, तुम करते हो बेहद का संन्यास। कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, फिर भी तो इसी दुनिया में है ना, और जगह तो कहाँ जा नहीं सकते हैं। तो ये है हद का संन्यास। देखो मुजफ्फरपुर की नारियां अभी तैयार हुई है। कहाँ की नारियों की बात बताई? मुजफ्फरपुर बिहार में। मुजफ्फरपुर की नारियां अभी तैयार हुई हैं, समझती हैं हम सन्यासियों का सामना करेंगे। बाबा युक्ति से समझाते रहते हैं, उन्हें कैसे समझाओ? बोलो हम चाहते हैं कमल समान गृहस्थ व्यवहार में रहें और जीवन मुक्ति पावे। क्या करें? जैसे कमल फूल कीचड़ में रहता है, ऐसे हम घरगृहस्थ की कीचड़ में तो रहे, भले हमारा पति ज्ञान में नहीं चलता है, हम बांधेली होकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मन बुद्धि से उस कीचड़ की दुनिया से क्या करे? उपराम हो जाए। पति कीचड़ में ढकेलना चाहता है तो हमारी मन बुद्धि आत्मा को कीचड़ में ढकेलेगा या शरीर रूपी डब्बे को ढकेलेगा? शरीर रूपी डब्बे को ढकेलेगा, लेकिन हमारी आत्मा तो मुर्दा बन करके ऊपर उड़ सकती है ना। हमारी आत्मा अगर मुर्दा बन करके ऊपर उड़ जाए, हमारी आत्मा के अंदर कोई इस प्रकार की कशिश न रहे, विकारी सुख भोगने की इच्छा न रहे, तो हमारे ऊपर पाप लगेगा क्या? विकारी सुख का हमारे ऊपर कोई पाप लेप नहीं लगेगा, तो हम जीवन मुक्ति पावे। 20:8-65 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तो हम पतित हैं, देवी देवताएं भारत में पावन थे, इसी भारत में देवी देवताएं पावन थे, और अभी हम पतित हैं। हम भी देवताएं थे तो पावन थे, अभी हम असुर बन चुके हैं असुर दुनिया में, क्योंकि असुरों के राज्य में रहते हैं, तो यथा राजा तथा प्रजा। हम भी पतित हैं, हम वो ज्ञान अथवा जीवन मुक्ति चाहते हैं, तो उनको बताओ सन्यासियों को, आप तो घर बार छोड़ जाते हो, तुम्हारा तो हद का सन्यास है क्या? तुम घर बार को छोड़ जाते हो। घर बार किसे कहा जाता है? किसको कहें कि ये घर बार में है और ये सन्यास में? जो माता पिता को पति को पत्नी को छोड़ दे तो वो हुआ सन्यासी, और जो उनके साथ रहे क्या निभाता रहे तो वो है गृहस्थी। तो बोला आप तो घर बार छोड़ जाते हो, तुम्हारा इस तरह हद का संन्यास है। इस समय तो सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना, ये तो एक पतित पावन बाप का ही काम है क्या? पतित दुनिया को पावन बनाना ये सिर्फ सर्व का सजगति दाता एक राम का काम है, और तो कोई बना ही नहीं सकता। पावन गृह धर्म में सुख तो तुम दे नहीं सकते हो क्या? गृहस्थ धर्म में जब सत्युग में पावन बनेगा तो उसमें सुख देना तुम्हारा काम नहीं है। वो सत्युग में नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाना किसका काम है? किसने बनाया, ऐसी शिक्षा किसने दी राजयोग की? भगवान ने नर अर्जुन को ये शिक्षा दी कि तू हे नर अर्जुन ऐसी करनी कर जिससे नर से नारायण बने, और हे द्रौपदी नारी तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से नारायणी बने। तो अर्जुन और गृहस्थी नारी को भगवान ने आकर के देवी देवता बनाया था, कोई मनुष्य गुरु देवता बनाने का साहस नहीं कर सकता। तुम तो स्त्री को ही विधवा बनाकर चले जाते हो, तुम गृहस्थ को पवित्र फिर कैसे बना सकते हो? सचुग में पवित्र गृहस्थी थी, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो ये तुम्हारी महिमा नहीं है। क्या कहा? उन सन्यासियों को समझाओ, जिन सन्यासियों की पता ही नहीं है इस बात का कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये किसकी महिमा है? ये देवताओं की महिमा है या पवित्र रहने वाले सन्यासियों की महिमा है? देवताओं की महिमा है। तो देवताएं ऐसे पवित्र बनते हैं। आप तो सन्यास करके जंगल में चले जाते हो, लेकिन हम सन्यास करके जंगल में जाने वाले नहीं है। हमको तो वह ज्ञान चाहिए जो हम गृहस्थ धर्म में रहते पवित्र है। कौन सा ज्ञान चाहिए? गृहस्थ धर्म की कीचड़ में भी रहे, छोड़े नहीं, और फिर और हम पवित्र भी रहे, राज्य करें। सिर्फ पवित्र ही न रहे, पवित्र बनकर हम नई दुनिया में राज्य भी करें। तुम्हारा तो हठ योग कर्मयोग का कर्म संन्यास है, तुम कर्म को छोड़ देते हो। क्या करते हो? तुम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए गीता का पाठ करते रहते हो। सन्यासी क्या करते हैं? रामायण और गीता का पाठ करते रहे, और तो कोई धंधा नहीं करते, और कोई धंधा नहीं। तुम्हारा कर्म का संन्यास है, कर्म संन्यासी तुम हो नहीं सकते वैसे, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, कोई भी जीव जंतु नहीं है जो हार मास का पुतला हो और वो कर्म का संन्यास कर्म इंद्रियों से करना छोड़ दे। कर्मेंद्रिया हैं तो कर्मेंद्रियों से हरेक को कर्म करना ही पड़े। कर्मधारा एक भी सेकंड रुक नहीं सकती। क्या नाक है तो नाक से क्या करेगा? श्वास लेगा। कान है तो क्या करेगा? कुछ न कुछ सुनेगा, जरूर सुनेगा तो बुद्धि धारण भी करेगी। आंख है तो आंख से क्या करेगा? देखेगा जरूर। तो कर्मेंद्रिया जब तक है उन कर्मेंद्रियों से कर्मधारा बगैर कोई भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षर रंग है। ये तो हमारा है कर्मयोग और राजयोग। कर्म करते रहे और शिव बाबा को बुद्धि से याद भी करते रहे। क्या कोई भी कर्मेंद्रिय हो, चाहे कर्मेंद्रिय हो और चाहे ज्ञान इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रियों से भी कर्म करे, कर्मेंद्रियों से भी कर्म करे, लेकिन बुद्धि कहाँ रहे? बुद्धि बाप की याद में लगी रहे। तो हमारा यह है कर्मयोग राजयोग। क्या कर्मयोगी भी है और साथ साथ राजयोगी भी है। हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, अब हम जान गए हैं कैसे हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, वर्ण भी गाए जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण का कोई को पता ही नहीं है। हम अब फिर देवता वर्ण में जाना चाहते हैं। तुम तो सन्यासी हो। शंकराचार्य आदि का जो मत है वो बाद में आता है और सूर्यवंश सबसे पहले आता है। पहले कौन सा धर्म है? पहले सूर्यवंश, फिर बाद में चंद्रवंश, उसके बाद इस्लाम वंश, फिर बौद्ध वंश, फिर क्रिश्चियन वंश, फिर संन्यास आता है। तो तुम तो बहुत 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 समय के बाद तुम्हारा धर्म आता है। माने यज्ञ के आदि में जो भी आत्माएं निकली थी वो संन्यास धर्म की पहले निकली थी, घरघाट छोड़ने वाली आत्माएं निकली थी, ये गृहस्थी के अंदर रहने वाली आत्माएं थी, बजा देने वाली थी। प्रजापिता और प्रजा माता वो गृहस्थी थे या घरघाट छोड़ने वाले थे? जिनके द्वारा यज्ञ का फाउंडेशन पड़ा था वो गृहस्थी थे। तो तुम सत्यु की बातों को तुम क्या जानो? ये तो बाप ही सृष्टि की चक्र का आदि मध्य अंत बैठ करके समझाते हैं, तुम तो आते हो बाद में, फिर भी रजोगुण में आ गएंगे जरूर। तुम तो कह देते हो स्त्री नरक का द्वार है, ये तो तुम निंदा करते हो। देवियों की तुम पूजा करते हो, जिन देवियों की तुम पूजा करते हो जरूर वो स्वर्ग का द्वार
کھولنے والی ہوں گی.
جن دیویوں کی تم پوجا کرتے ہو ضرور وہ سورگ کا دوار کھولنے والی ہوں گی. تم تو سب نرک میں ہو نا. سورگ ستیوں کو کہا جاتا ہے. کیا تم پاون دنیا استھاپن کر سکتے ہو؟ تم تو پتت ہو, تب تو تم جاتے ہو گنگا اسنان کرنے. چاہے چیتنی گنگا ہو اور چاہے جڑ گنگا ہو, چاہے حد کے سنیاسی ہو چاہے بے حد کے سنیاسی ہو, جو بھی ہوں گے وہ اسنان کرنے کہاں جائیں گے؟ گیان گنگاؤں کا اسنان بیٹھ کر کے کرتے ہیں, پھر ٹی وی میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو گیان گنگا گیان دے رہی ہے. لیکن گیان گنگاؤں میں اسنان کرنے سے کیا کوئی پاون بنے گا؟ گنگائیں جو ہیں وہ منن چنتن منتھن کر کے کیا نئی بات نکالتی ہے کہ جو برہما بابا نے سنا دیا ہے وہی سناتی ہے؟ کیا سناتی ہے؟ جو برہما بابا نے سنا دیا ہے وہی سناتی ہے. منن چنتن منتھن تو ان کا چل کچھ بھی چلتا ہی نہیں, لیکن پرماتما باپ آ کر کے جو کچھ سناتے ہیں وہ سب نئی باتیں سناتے ہیں. سنیاسی کے ساتھ ساتھ بات چیت کرنے کی تم کو ہوشیاری ہونی چاہیے, شکتی چاہیے. تم سنیاسیوں کو کہو تم کو پتا نہیں ہے سچا سچا کمبھ میلا کس کو کہا جاتا ہے. کمبھ کا میلہ لگتا ہے نا 12-12 سال کے بعد, تو کمبھ کا میلا کیا ہے کس کو کہا جاتا ہے تم کو اس بات کا پتا نہیں ہے. کس بات کا؟ کمبھ کے میلے میں کیا ہوتا ہے؟ الہ آباد میں جاتے ہیں کمبھ کا میلہ لگتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ 3 ندیاں کہتے اکٹھی ہوتی ہے, سرسوتی ندی, یمنا ندی اور گنگا ندی. تو ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ وہ گیان گنگا ہے اور وہ سرسوتی کون ہے اور وہ برہما وہ سرسوتی کون ہے اور وہ یمنا ندی کون ہے جو سوری کی پہلی پہلی پتری کہی جاتی ہے. سچا اچھا کمبھ کا میلہ کس کو کہا جاتا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے. آتما اور پرماتما کا جب یہ میلہ ہوتا ہے ارتھات پتت پاون اور پتتوں کا میلہ ہوتا ہے, تب پتت پاون باپ بیٹھے پتتوں کو پاون بناتے. کیا جب تینوں چیتنیہ ندیاں مل کر کے اکٹھی ہوتی ہیں, گیان گنگا بھی گیان یمنا بھی اور گیان کی سرسوتی جگدمبا بھی, تینوں مل کر کے اکٹھی ہوتی ہیں, تب بیٹھ باپ پتتوں کو پاون بناتے ہیں. بیٹھ پاون بناتے ہیں من ضرور کوئی شریر میں پرویش کر کے پتتوں کو پاون بناتے ہیں. مظفرپور کی بچیاں ابھی سروس میں کھڑی ہوئی ہیں, تھوڑے ہی ٹائم میں آپس میں مل سروس چلائے رہی ہے. کہاں کہاں تو بی کے بغیر ایک دم رڑیاں مارنے لگ پڑتی ہیں کہ بابا ہم ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, ہم چل نہیں سکتے ہیں. ارے ابھی سنیاسیوں کی بات کر رہے تھے, ابھی کس کی بات کرنا شروع کر دی؟ ابھی بات کس کی ہو رہی تھی؟ سنیاسیوں کی بات ہو رہی تھی, اب کس کی بات کرنا شروع کر دی؟ اب بی کے کی بات شروع کر دی. مانے جیسے بھکتی مارگ میں کہتے ہیں کہ ہم گرو بغیر ہم چل نہیں سکتے, ہم اپنگ ہو جاتے ہیں, ایسے ہی یہاں برہمنوں کی دنیا میں کیا حال ہے؟ اگر ان کو برہما کماریاں گیان سنانے کے لیے نہ ملیں تو کیا سمجھتے ہیں ہم تو اپنگ ہو گئے. کہاں کہاں تو بی کے بغیر ایک دم رنیاں مارنے لگ پڑتے ہیں کہ بابا ہم ٹھنڈے پڑ گئے, ہمیں بی کے چاہیے, ہم چل نہیں سکتے. بغیر بی کے ہم سینٹر چلائے رہے ہیں, اب یہ تو بڑا مشکل ہے, اس میں ڈھیلے ہونے کی تو بات ہی نہیں. اگر تمہارے پاس برہما کماری کوئی چلانے والی نہیں ہے تو اس میں ٹھنڈا ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. مانے بابا اشارہ دے رہے ہیں کرو بھیا بل اپنی گیتا پاٹھشالا کھولو اور اس میں لکشمی نارائن بنو اور دوسروں کو بھی لکشمی نارائن بننے کا گیان سناؤ. اس میں کسی کا آدھار لینے کی درکار نہیں ہے. باپ مہا منتر دیتے ہیں, باپ اور برسوں کو یاد کرتے رہو تو تم کو راجدھانی کا تلک مل جائے گا. میٹھے میٹھے لاڈلے بچے گرس ویوہار میں رہ کر کے کمل پھول سامان رہو. جتنا پیار سے کام نکل سکتا ہے اتنا غصے سے نہیں نکل سکتا. گرستی میں بھی جتنا ہو سکے پیار سے کام نکالو. بچے تنگ کرتے ہیں تو سمجھو ان کا ہمارا پوری جنم کا کوئی حساب کتاب ہے, اس لیے یہ ہم کو تنگ کرتے ہیں. جب حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو یہ بھی ہم کو تنگ کرنا بند کر دیں گے. ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. माताओं को छोटे बच्चों के ऊपर गुस्सा आ जाता है, पिटाई टाई कर देती है। तो बाबा कहते हैं ये तो महात्मा बच्चे होते हैं, महात्माओं के ऊपर गुस्सा नहीं करनी चाहिए। बहुत मीठे बनो, बाप की याद में सदैव मुस्कराते रहो, देवताओं की चित्त देखो कितने हर्षित होते हैं। भले कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करता है, हैं? जब गुस्सा करता है तो समझो ये कार्टून है। कार्टून का चित्र टीवी में देखते हैं तो देख करके खुश होते हैं ना, हैं? कोई नाराजगी थोड़े ही आती है। तो ऐसे ही ये दुनिया के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देख करके कार्टून समझो। अभी तुम जानते हो ये तो हम थे, हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, अभी हम संगम पर ब्रह्मावंशी बने। ब्रह्मावंशी सो ईश्वरवंशी, क्या कहा? ब्रह्मावंशी या ब्रह्मा कुमार कुमारी वंशी? ब्रह्मावंशी। ब्रह्मावंशी का गायन है कहीं शास्त्रों में ये सुना है? हमें ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान मिला है, ब्रह्मा कुमारी से हम जन्म लिया। किससे जन्म लिया? डायरेक्ट ब्रह्मा से क्या जन्म लिया। तो उन ब्राह्मणों से एक मुरली में कहा, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। तो सूक्ष्म वतन में तुम्हारा ब्रह्मा है, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? ब्रह्मा भी यहाँ होना चाहिए ना, जिसमें तन में प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो ब्रह्मावंशी सो ईश्वरवंशी, बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति का, ये भी तुम जानते हो कि ये बाप का वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति का कौन प्राप्त कर सकता है? जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे, क्या कहा है? कौन से वंशी के होंगे? सिर्फ सूर्यवंशी थे। तो पहले कौन सा परिवार, कौन से परिवार की इकाई बनेगी? सूर्यवंशियों का ग्रुप तैयार होगा या चंद्रवंशी इस्लामवंशी भी उसमें मिक्स होंगे? पहले सूर्यवंशी इकट्ठे होंगे, सूर्यवंशियों का ग्रुप तैयार होगा। वो इस साल की पिछले साल की अभ्यतवाणी में जो भी बोला है किसके लिए बोला है? सारा सूर्यवंशियों के बारे में बोला हुआ। तो ये समझने की बात है ना, हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल लिया है। अभी तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम सो वैश्य बने, हम सो क्षत्रिय बने, हम सो शूद्र बने। तो ये आत्मा कहती है, हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। वो है वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशेष वर्ल्ड। ये दुनिया कैसी है? विषय विकारी दुनिया है। सुख धाम, दुख धाम और शांति धाम, जहाँ हम आत्मा रहती है। कहाँ कहाँ रहती है हम आत्मा? या तो सुख धाम में रहती है सतयुग त्रेता, या तो दुख धाम में रहती है द्वापर कलयुग, या तो शांति धाम में रहती। इन तीनों के मुखिया कौन से? सुख धाम, दुख धाम और शांति धाम के मुखिया कौन है? हैं? इन तीनों की त्रिमूर्ति है कि नहीं कोई? हैं? क्या शिव बाबा? नहीं, इनकी भी त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा किस तरफ दिखाया गया है? सूक्ष्म वतन में तीन पुरियां दिखाई है। ब्रह्मा किस तरफ है? वहाँ दुखधाम है कि सुखधाम है? हैं? ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला होता है या देवता होता है? दाढ़ी मूछ वाला होता है। तो दुखधाम में हुआ या सुखधाम में हुआ या शांति धाम में हुआ? दुखधाम में। और विष्णु कहाँ होता है? सुखधाम में। और शंकर जी कहाँ किस हो रहे हैं? शांति धाम। तो वो हुए दुखधाम के मालिक, वो हुए सुखधाम के मालिक और वो हुए शांति धाम के मालिक। तो हम आपस में भाई भाई हैं। क्या कहा? चाहे दुखधाम के मालिक है, चाहे सुखधाम के मालिक, चाहे शांति धाम के मालिक, लेकिन तीनों आप